दौला पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 4। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वर्षायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, जय उधरसेननाहो, जेन महाकम्म पयणिपाहुडसेलो, बुद्धिशिरेणोद्धरियो, समप्यो फुफयंतस। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो द्वितीय खंड अपना शुरू हुआ है, इसका नाम है खुद्दाबंध, और उसमें अभी हम सातवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या यहाँ 35 पर आ गए। 35 नंबर के पृष्ठ पर आ गए, सातवीं पुस्तक के 35 नंबर के पृष्ठ पर। देखो, हमने नारकियों में ये बात देखी थी कल, जिसको हम नाम कर्म के उदय काल कहते हैं, और उसमें उनके उदय स्थान। उदय काल का अर्थ है नाम कर्म के कहाँ कहाँ क्या क्या जुदे जुदे उदय रूप प्रकृतियां होती, उसको उदय काल कहेंगे। तो एकेंद्रियों को छोड़कर बाकी जीवों में 5 उदय काल होते हैं। एक कारमान शरीर कहो या विग्रह गति का। कारमान शरीर कहने का मतलब यह है कि संयोग केवली के समुद्घात अवस्था में भी ये होता है उदय स्थान, उदय काल, इसलिए उसको कहेंगे कारमान शरीर उदय काल या विग्रह गति उदय काल, यानी विग्रह गति का काल। मिश्र शरीर काल, यानी जहाँ शरीर ग्रहण करना शुरू कर देता है उस समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पूर्व समय तक, वो मिश्र शरीर काल। तीसरा है शरीर पर्याप्ति काल, शरीर पर्याप्ति पूरे होने के समय से लेकर जब तक उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती उसके एक समय पूर्व तक। उसके बाद उच्छ्वास पर्याप्ति काल, वो कहाँ तक चलेगा, भाषा पर्याप्ति के एक समय पहले तक, और लास्ट में भाषा पर्याप्ति काल, वो आयु के अंत तक चलेगा। भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने के समय से लेकर अंत तक चलता है। मन पर्याप्ति काल कोई नहीं होता है, वहां कोई अन्य कर्मों का उदय नहीं शुरू हो जाता है मन संबंधी। भाषा संबंधी स्वर नाम कर्म का उदय तो चालू हो जाता है भाषा पर्याप्ति पूरी होने पर, ऐसा वहां कोई अन्य कर्म का उदय नहीं शुरू हो जाता। अब उसमें ये देखना है कि विग्रह गति में कौन कौन सी उदय रूप है, तो वहां तो 12 प्रकृति तो ध्रुव उदय ही कहते, ध्रुवोदय, जैसे हमने ध्रुव बंदी देखते थे ना पूर्वी पहले, अभी उसको कहते ध्रुवोदय, यानी ये तो उदय रूप हो गई नियम से कहीं पर भी किसी भी अवस्था में। तो कौन कौन सी है, तो उसमें तो है कि स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, तेजस शरीर कारमान शरीर, वो वर्णादि 4, अग्रु लघु और निर्माण, ये ध्रुवोदय है। ये तो 12 हो गई। अब विग्रह गति में अनुपूर्वी सहित अगर हमको लेना है तो 9 उसकी हो जाए। कौन सी है, एक गति उसकी गत्यानुपूर्वी, जाति, शरीर नहीं, शरीर का उदय वहां जाने पर पहुंचता है, होता है, शरीर नहीं, त्रस बादर पर्याप्त या जो कोई अन्य होगा वो उसका, वो शरीर को नहीं, प्रत्येक या साधारण उसको यहाँ नहीं लेना है। ये तीन हो गए विग्रह गति में, और फिर से गति गत्यानुपूर्वी, जाति, फिर वो त्रस बादर पर्याप्त है, उसकी जो अपोजिट जो कुछ होगी वो तो हमने उसमें लिया था। बाकी जो 3 है ना, दुर्भग अनादेय अयशस कीर्ति, उसमें से ये 9 हो गई। तो 12 और 9 21 हो गए, समझ में आई बात। तो ये विग्रह गति में तो होगी। अब वहां पहुंचने पर उसमें से अनुपूर्वी का उदय मिट जाता है तो 20 हो गई। अब वहां क्या शुरू होता है? प्रत्यय क्या साधारण शरीर नाम कर्म का उदय शुरू होगा, औदारिक वैक्रियक जो है उसका शुरू होगा, जो द्विंद्रिय आदि हो गए उसके अंगोपांग भी होगा, मनुष्य तिर्यंचों में सहनन का भी उदय होगा, इस तरह से यथाग्य जिसके जो है अन्य के वो उपघात भी यहाँ शुरू हो जाता है। यानी एकेंद्रिय अगर होगा तो विग्रह गति में अनुपूर्वी का उदय था वो रुक गया, जैसे तिर्यंच गति अनुपूर्वी का उदय रुक गया, और एकेंद्रिय में जाने वाले का किसका उदय चालू हो जाएगा? प्रत्येक या साधारण शरीर नाम कर्म का, औदारिक शरीर नाम कर्म का, और फिर संस्थान संस्थान का शुरू हो जाएगा, और परघात नहीं उपघात, परघात बाद में होता है शरीर पर्याप्ति होने पर। तो ये चार यानी 24 हो जाएंगे यहाँ पर। जब शरीर पर्याप्ति पूरी होती है तो परघात का उदय चालू होगा, स्थावर है इसलिए, और अन्य हो गए तो विहार गति का भी शुरू हो जाता है, और स्थावर में आतप उद्योत होगा तो वहां शुरू हो जाता है, बाद में कुछ श्वास प्रकृति का उदय चालू हो जाते हैं, श्वासोश्वास का। अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे फिर दोबारा। देखो अभी हम पेज नंबर 35 पर थे। नारकियों के तो हमने कल देख लिए थे, याद है ना? नारकियों की फिर बात देख लेते हैं। देखो ये बात यहाँ पेज नंबर 32 से शुरू हुई थी, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। नीचे का पैराग्राफ है ना, वहां पर नीचे से चौथी लाइन, नारकी जीवों के 5 उदय स्थान है। देखो स्थान का अर्थ है कितने प्रकृतियां बनती हैं, और हमने जो 5 काल गिनाए वो जुदी बात है, स्थान में नंबर ऑफ प्रकृतियों को कहना है, और काल में वो विग्रह गति काल है कि मिश्र शरीर काल है, कि शरीर पर्याप्ति काल है, कि उच्छ्वास पर्याप्ति काल है, कि भाषा पर्याप्ति काल है, उसको कहना है। तो उदय के काल 5 प्रकार के है, और वो स्थान जुदे जुदे, कौन सी पर्याय वाला जीव है उसकी कितनी प्रकृतियां हैं वो नंबर ऑफ प्रकृतियों कहेंगे तो वो स्थान हो जाता है। देखो नारकी जीवों के 5 उदय स्थान है, 21 यानी वो विग्रह गति वाला, 25 वहां शरीर ग्रहण करने का पहला समय, यानी नरक संबंधी जो प्रकृति हमने अभी 12 ध्रुव उदय गिनी थी, नारकी है तो नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी वो विग्रह गति में थे, वो अभी गिनेंगे यहाँ पर कौन से वो बताएंगे। तो 25, फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर 27 हो जाते हैं, उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने पर 28 हो जाते हैं, और भाषा पर्याप्ति पूरी होने पर 29 हो जाते हैं। अब ये कौन से है वो फिर दोबारा पढ़ते हैं, पेज नंबर 32 लास्ट लाइन, नरक गति पंचेंद्रिय जाति, तेजस कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, नरक गत्यानुपूर्वी, अग्रु लघु, त्रस बादर पर्याप्त, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ। अभी ये जो अन्य जो 3 रह गए ना, दुर्भग अनादे अयशस कीर्ति, ये नारकियों में नियम से होते हैं इसलिए उसको लिया, जिसके में पॉसिबिलिटी होगी उसको वो भंगों में गिनेंगे। और निर्माण प्रकृतियों को लेकर 21 प्रकृतियों संबंधी पहला उदय स्थान होता है, 33 नंबर पेज। हाँ रिपीट कर रहे, यहाँ भंग एक ही हुआ क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शनल प्रकृति नहीं है, यही उनके उदय रूप होती है। अब यह 21 प्रकृति वाला उदय स्थान किसके होता है? तो विग्रह गति में विद्यमान नारकी जीव के होता है। अब बाद में वो तो एक समय दो समय के लिए होगा, उसके आगे देखो नीचे से वो बीच वाला 4 लाइन का पैराग्राफ है ना, वहां पर बाद में उसको प्रकृति 25 प्रकृति वाला स्थान हो जाता है, 25 वाला मिला। वहां 2 नाम लिखे थे कल आपने, कल नहीं थे, देखो मैं पढ़ती हूँ आपको वही चलने। उस उदय स्थान में, उस स्थान में ये ही प्रकृतियां हैं, इतनी विशेषता है कि पूर्वोक्त 21 प्रकृतियों में से नरक गत्यानुपूर्वी को छोड़कर, अभी यहाँ डालना है आपके 2 नाम, एक है वैक्रियक शरीर और दूसरा नाम है हुंडक संस्थान, लिखा था ना? हाँ पहले हमने डाला था उसमें, फिर वैक्रियक शरीर अंगोपांग उपघात और प्रत्येक शरीर, इन पांच प्रकृतियों को मिला देने, वह 21 में से एक कम कर दी और पांच मिला दिए। देखो देव और नारकियों में पांच मिलाएंगे, मनुष्य तीर्यंच जो है त्रसों में, तो उसमें सहनन भी मिलाएंगे, तो उनको यहाँ पर 26 वाला हो जाएगा। देव नारकियों का यहाँ पर 25 वाला हो जाता है, ख्याल में आई ना बात, 25 वाला हो जाता है।
अब
तीरंज का भी 26, मनुष्य और तीरंजों में 26 हो जाएगा, द्विंद्रियों से लेकर, एक इंद्रियों में नहीं, हाँ एक इंद्रियों में सहनन भी नहीं और अंगोपांग भी नहीं है, तो उसके 24 हो जाते हैं। अब देखते हो 34 पेज पर वो कहाँ होता है, वो बात हो गई। उसके बाद 25 में परघात और अप्रशस्त विहार गति मिल जाती है, वो कब होता है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है, यानी 25 में दो मिलने पर ये 27 वाला स्थान हो जाता है। कब तक, तो जब तक वो श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी होते ही श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है, तो 27 से 28 हो जाते हैं। उसके बाद जब भाषा पर्याप्ति पूरी होती है तब स्वर नाम, इनके लिए दूसरा नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है, तब वो 29 वाला स्थान हो जाता है। वो कब तक रहता है, तो कहते हैं मरण के समय तक। ये कल हमने बातें फिर सभी पढ़ी थी विस्तार से, इसलिए मैंने उसके इम्पोर्टेंट बातें बता दी आपको, यानी आयु के अंत तक उसको भाषा नाम कर्म के उदय की अपेक्षा भाषा पर्याप्ति काल कहेंगे। उनके मन पर्याप्ति होती है पूरे और सारी पर्याप्ति उनकी पाई जाती है, उसकी बात नहीं लेना यहाँ पर। नाम कर्म के उदय की अपेक्षा जो पांच काल बताए, विग्रह गति काल या कारमान शरीर काल, मिश्र शरीर काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल और भाषा पर्याप्ति काल। अब यहाँ तीर्यंच गति में बता रहे, नीचे का पैराग्राफ, यहाँ से अपना आज का विषय शुरू हो जाता है। तीर्यंच गति में, यहाँ तीर्यंच गति में एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जो कोई पॉसिबल है वो पहले गिनाएंगे, फिर किसके कितने होते हैं वो बाद में बताएंगे। तो एक तीर्यंच गति में 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, ये 9 उदय स्थान होते हैं। टोटल उन्होंने गति की अपेक्षा बताए सारे ही सारे। अब 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये सब अंकों में लिख दिए। अतः अब सामान्यतः एकेंद्रिय जीवों के, सामान्यतः एकेंद्रिय कहने से वो भले बादर हो, सूक्ष्म हो, पर्याप्त हो, अपर्याप्त हो, सबको मिलकर उन्होंने गिनाए हैं। तो 21 यानी विग्रह गति में 21 हो जाएंगे, वहां पहुंचने पर शरीर ग्रहण करने के समय 24 हो जाएंगे, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर 25 हो जाएंगे, और किसी को आतप उद्योत हो जाएगा उसी को 26 हो जाएंगे, और 27 यानी 25 वाला 26 हो जाएगा और 26 वाला 27 वाला हो जाएगा, इसलिए दोनों उनके गिने। इनके चार चार ही स्थान हो जाएंगे, यानी चार काल हो गए। फिर से एकेंद्रियों में वो स्वर नाम कर्म है ही नहीं है, तो उनके उच्छ्वास पर्याप्ति काल तक ही काल गिनेंगे, और अपर्याप्तों में कितने काल हो गए, अपर्याप्तों में काल कौन थे, कितने हो गए, विग्रह गति मिश्र वाला होगा। शरीर पर्याप्ति कैसे होगा, पर्याप्ति पूरी होती नहीं है, यानी अपर्याप्त जीवों के लिए कोई भी पंचेंद्रिय तक का कोई भी अपर्याप्त हो, लब्धि अपर्याप्त, विग्रह गति का और मिश्र शरीर का, मिश्र काय योग में मरण होता है ना उनका, औदारिक मिश्र औदारिक काय योग में पहुंचते नहीं है, पर्याप्ति पूरी होगी तो अन्य नाम कर्म का उदय हो जाएगा। ये परघात उच्छ्वास वगैरह उन्होंने बांधे ही नहीं होते अपर्याप्त के साथ, यानी जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है उनके परघात विहाय गति उच्छ्वास आदि कोई बनते नहीं उसके साथ, उसका उदय भी नहीं है। तो यहाँ तो उन्होंने इन टोटल गिनाए हैं, परंतु एकेंद्रियों में नाम कर्म के काल कितने हो गए, कि विग्रह गति का काल, बहु धारण करने के पहला शरीर धारण करने के समय का मिश्र शरीर काल, पर्याप्त जीवों में शरीर पर्याप्ति काल और उच्छ्वास पर्याप्ति काल, चार काल हो गए उनके लिए, भाषा पर्याप्ति काल उनमें नहीं होता। अब उसमें आतप रहित वाला, आतप उद्योत रहित वाले जीवों के क्या होगा, पहला 21 वाला, फिर 24 हो जाते हैं, 24 का 25 और 25 का 26 होगा। जिसके आतप या उद्योत है वो पहला 21 का, फिर 24 का, शरीर पर्याप्ति होने पर दो बढ़ जाएगी, आतप और परगात, 24 से 26 हो जाएगा। आतप उद्योत एक साथ एक ही को नहीं होता, किसी को आतप किसी को उद्योत, हाँ, पर एक जीव को एक ही होगा और परघात का भी उदय होगा। द्विंद्रिय नहीं है इसलिए विहाय गति को नहीं लेना उनके, यानी पहला 21 था फिर 24 हुआ, आतप उद्योत वाले को 26 हो जाएगा डायरेक्ट, और फिर उच्छ्वास के काल में 27 हो जाएगा। इसलिए दोनों काल यहाँ, दोनों को गिने यहाँ पर, 25 26 27 दोनों लिए, पर किसी को 25 26 होगा और किसी को 26 27 होगा। देखो ये पढ़ते, फिर नीचे से तीसरी लाइन, आतप और उद्योत इन दो प्रकृतियों के उदय के बिना एक जीव को एक काल में नहीं होते, अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा बता रहे। एकेंद्रीय जीव के 27 प्रकृतियों वाले स्थान से रहित शेष चार उदय स्थान होते हैं, यानी जिसको आतप या उद्योत नहीं है उसके 21 24 25 26 ये चार स्थान होते हैं। आतप और उद्योत के उदय सहित एकेंद्रीय जीव के 25 प्रकृतियों वाले स्थान से रहित, पहला वाला कौन सा लिया, 21 वाला, 24 वाला, 25 वाला और 26 वाला, उसको 27 वाला स्थान नहीं है, और जिसको आतप या उद्योत है उसके 25 वाला नहीं होगा, तो 21 के बाद 24 और डायरेक्ट 26 और फिर 27 होगी। ये समझ में आई रही बात। अब आते हैं पेज नंबर 36 पर, उनमें आतप और उद्योत से रहित एकेंद्रीय जीव के उदय स्थान कहने पर, पहला तो विग्रह गति में 21 प्रकृतियों का तो सबके होता है, तो इनके भी उतना ही होगा। हमने तो 12 तो ध्रुवोदय देखी थी, और फिर गति जाति अनुपूर्वी वगैरह वो सब बातें गिनेंगे, तो अभी इसको पढ़ेंगे। अभी हम देखो, तिर्यंच गति एकेंद्रीय जाति तेजस और कारमान शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श तिर्यंच गत्यानुपूर्वी अग्र लघुक स्थावर, जैसे हमने त्रस बादर पर्याप्त ये तीन जोड़ी लेना, उसमें से आयदर लेना, अब यहाँ तो एक केंद्रीय इसलिए स्थावर को ही लेना, पर बादर या सूक्ष्म दोनों ही हो सकते हैं, ये ऑप्शनल हो जाएगा, और दोनों में से एक, और पर्याप्त और पर्याप्त में से कोई एक, क्योंकि अपर्याप्त जीवों के भी 21 प्रकृतियां उदय रूप है, पर्याप्तों के भी है, तो उस नाम कर्म का उदय विग्रह गति से ही चालू हो जाता है। स्थिर और अस्थिर दोनों को लेना, शुभ और अशुभ दोनों को लेना। अभी है एकेंद्रीय इसलिए दुर्भग और अनादेय ही लेना, परंतु एकेंद्रीय जीव में यश कीर्ति और अयश कीर्ति का ऑप्शन होता है। वो किस में होता है, अपर्याप्तों में नहीं होता, अपर्याप्तों में तो अयश कीर्ति ही होगी, सूक्ष्म में भी अयश कीर्ति ही होगी, बादर पर्याप्त जीवों में यश कीर्ति का उदय हो सकता है। हाँ, बादर पर्याप्तों में अयश भी हो सकता है, बादर पर्याप्त जीव लेंगे तो यश या अयश दोनों का ऑप्शन है, परंतु सूक्ष्म और अपर्याप्त जीवों में मात्र अयश कीर्ति ही है, अयश कीर्ति। हाँ, नारकी में भी अयश कीर्ति है, देवों में केवल यश कीर्ति लेंगे मेरे ख्याल से। नहीं, देवों में भी दो ऑप्शन होते हैं यश अयश का, परंतु विग्रह गति में हम देखेंगे, देखो बाद में देखेंगे। और निर्माण इन 21 प्रकृतियों का उदय विग्रह गति में वर्तमान एकेंद्रीय जीव के होते हैं। अब शंका पूछते हैं, यह 21 प्रकृति वाला उदय स्थान कितने काल तक रहता है? जगन्यता एक समय और उत्कृष्ट से तीन समय तक यह उदय स्थान रहता है। हमने ये बात देखी थी कि तो तीन समय तो एकेंद्रीय में ही घटित होते हैं, वो भी सूक्ष्म में घटित होते हैं, ऐसा देखा था, है ना? क्योंकि जहाँ त्रसनाली में से त्रसनाली में आने वाले के दो मोड़ से ज्यादा नहीं लिखते हैं, यहाँ अक्ष परावर्तन करके भंग निकालना चाहिए। देखो अक्ष परावर्तन याद है, जब हमने प्रमाद के भेदों की चर्चा की थी हा? अक्ष परावर्तन यानी जो ऑप्शनल जितनी प्रकृतियां है उसके बदलने से भंग होते हैं। जैसे अभी हमने जो लिस्ट पढ़ी उसको फिर दोबारा देख लीजिए। उन्होंने पर्याप्त बादर या सूक्ष्म, यानी बादर और सूक्ष्म में से एक लिया, यानी ये तो दो हुए इसके, पर्याप्त और अपर्याप्त में से कोई एक और यशकीर्ति और यशकीर्ति में से कोई एक, तो कितने टोटल हो जाएगी वो दो, ये दो और ये दो, दो गुना दो गुना दो, आठ अलग अलग भंग हो जाएंगे। उसको कहेंगे स्थान ये है और भंग इतने हो जाते। कौन सा स्थान लिया? 21 वाला, और उसमें भंग कितने हो गए? तो आठ। यानी कैसे कैसे भंग हो गए, जैसे किसी को बादर के साथ पर्याप्त और यशकीर्ति ली, बादर के साथ पर्याप्त और यशकीर्ति ली, फिर सूक्ष्म के साथ पर्याप्त लेकर अयश लेना, सूक्ष्म के साथ अपर्याप्त लेकर अयश लेना, इस तरह से वो सबके टोटल भंग निकालना। देखो नीचे फिर पढ़ते, यहाँ अक्ष परावर्तन करके भंग निकालना चाहिए, उनमें अयश कीर्ति के उदय के साथ मादर सूक्ष्म और पर्याप्त पर्याप्त के विकल्प से चार भंग होते हैं, और यश कीर्ति के उदय के साथ एक ही भंग होता है, क्योंकि वो बादर पर्याप्त के ही होता है, क्योंकि सूक्ष्म और अपर्याप्त के साथ यश कीर्ति के उदय का अभाव है। वो साधारण वाली बात यहाँ नहीं ली, क्योंकि साधारण नाम कर्म का उदय यहाँ पर नहीं होगा, वो शरीर ग्रहण करने के समय होगा, वहां उसको भंगों में गिनेंगे, उसका ऑप्शन वहां लेंगे, प्रत्येक या साधारण शरीर वाली ऑप्शन वहां लेंगे 24 वाले स्थान में, यहाँ नहीं लेंगे। यहाँ कौन से हमने ऑप्शन लिए? पर्याप्त या अपर्याप्त, बादर या सूक्ष्म। अथवा यूं कहो कि यश कीर्ति के साथ सूक्ष्म और अपर्याप्त प्रकृतियों का उदय नहीं होता, इस कारण इस उदय स्थान में पांच ही भंग होते। ये समझ में आए कौन से पांच हुए? यानी उन्होंने यश और यश के साथ ले लिए, अयश के साथ हाँ बादर सूक्ष्म और अपर्याप्त के लिए, परंतु उसमें बादर और सूक्ष्म पर्याप्त या अपर्याप्त चारों ही हो सकते हैं, और यश कीर्ति के साथ केवल वो बादर पर्याप्त हो, इसलिए इस तरह ये पांच लिए उन्होंने। होगा ही नहीं आगे चलकर, वो साधारण के साथ भी नहीं लगाएंगे शरीर ग्रहण करने के साथ में। यहाँ वो आठ नहीं गिने हमने, वो बाद में, क्योंकि आठ इसके लिए मैंने लिए थे साधारण के बाद, बाद में हो गए आठ वाले भंग। यहाँ तो बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त और यश यश का एक ही भंग हो जाएगा, इसलिए पांच हो जाएंगे। यानी उन्होंने अच्छा किया, यश को बेस बनाकर उसमें चार भंग किए और यश कीर्ति के साथ एक भंग कर दिया। अब ये 21 वाला स्थान समझ में आया, विग्रह गति का तिर्यंचों में एक इंद्रियों में लगा रहते थे पूर्वोक्त 21 प्रकृतियों में से। अभी जब शरीर ग्रहण करने के समय में यहाँ क्या क्या शुरू होगा? इनके अंगोपांग नहीं होता तो औदारिक शरीर लेना, एक संस्थान यानी हुंडक संस्थान ही होता है उसको लेना, फिर उपघात और शरीर नाम कर्म जो है प्रत्येक या साधारण, इनका उदय यहाँ पर शुरू हो जाता है। देखो 21 प्रकृतियों में से आनुपूर्वी को छोड़कर औदारिक शरीर, हुंड संस्थान, उपघात तथा प्रत्येक और साधारण शरीरों में से कोई एक, इन चार को मिला देने पर 24 प्रकृतियों वाला उदय स्थान हो जाता है। अब 24 प्रकृति वाला उदय स्थान किस स्थान में होता है, उसका समाधान 37 पेज पर आते हुए, शरीर ग्रहण करने के प्रथम समय से लेकर, यानी विग्रह गति अभी हो गई, अभी जहां शरीर धारण करना है वहां से लेकर शरीर पर्याप्ति अपूर्ण रहने के अंतिम समय तक, यानी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पूर्व तक के स्थान में यह उदय स्थान होता है। यह उदय स्थान कितने काल तक होता है? समाधान, जघन्य और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त काल तक होता है, क्योंकि यथायोग्य पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, किसी को कम है, तो अंतर्मूर्त है। यहाँ अयश कीर्ति के उदय सहित देखो, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण विकल्प के आठ भंग तो उसके अकेले के हुए, किसके? अयश कीर्ति के। और यश कीर्ति के उदय सहित एक ही भंग हुआ, क्योंकि यश कीर्ति के साथ सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इन तीन प्रकृतियों का उदय नहीं होता। इस प्रकार इस स्थान में सब भंगों का योग न हुआ। ये समझ में आई? भंग कैसे निकाले? स्थान तो एक है, कौन सा? 24 वाला। एक इंद्रियों की बात चल रही है। विग्रह गति में तो हमने अयश कीर्ति के साथ पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर सूक्ष्म, ये चार भंग और यश कीर्ति का एक भंग, ऐसे पांच टोटल देखे थे। अब यहाँ पर जो शरीर मिश्र काल जो है, वहां पर अभी बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त, अब यहाँ प्रत्येक या साधारण शरीर नाम कर्म का उदय भी शुरू हुआ है, तो दो गुना दो गुना दो, आठ भंग यहाँ हो गए, आठ अलग अलग पॉसिबिलिटीज होगी, और यश कीर्ति के साथ एक, ऐसे नौ पॉसिबिलिटीज हो गए। इसको नौ भंग कहते हैं टोटल। पूर्वोक्त उदय स्थान की प्रकृतियों में से अपर्याप्त को छोड़कर, क्योंकि अपर्याप्तों के तो इतना यहाँ तक ही स्थान है, कौन से? विग्रह गति का काल है उनके लिए, और मिश्र शरीर काल है उनके लिए, वो शरीर पर्याप्ति का काल नहीं होगा, वो उसके पहले ही मर जाएंगे। इसलिए आगे के स्थान किनको हो गए? जो पर्याप्त नाम कर्म वालों के ही हो गए। तो उसमें से अपर्याप्त को छोड़कर शेष 24 प्रकृतियों में परघात को मिला देने पर 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। तो ये 25 वाला बादर को होगा क्या सूक्ष्म को होगा? ये दोनों को होगा, दोनों में पर्याप्त हो सकते हैं ना, सूक्ष्म भी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों प्रकार के होते हैं, बादर भी पर्याप्त अपर्याप्त होते हैं, तो सूक्ष्म में पर्याप्त हो सकते हैं ना, तो उनके भी होगा ये, ख्याल में ये बात? तो वो ऑप्शन में रखेंगे यहाँ बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त वाला ऑप्शन यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ तो सारे पर्याप्त है, पर बादर सूक्ष्म वाला ऑप्शन रहेगा, और प्रत्येक साधारण वाला भी ऑप्शन रहेगा। देखो ये बीच वाला पैराग्राफ है ना, समाधान का सेकंड पैराग्राफ। पूर्वोक्त उदय स्थान की प्रकृतियों में अपर्याप्त को छोड़कर शेष 24 प्रकृतियों में परघात को मिला देने पर 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। यहाँ पर अयश कीर्ति के उदय के साथ बादर सूक्ष्म और प्रत्येक साधारण के विकल्प से चार भेद होते, चार भंग होंगे, क्योंकि यहाँ पर अपर्याप्त का उदय नहीं होता, यानी अपर्याप्त जीवों के आगे के काल नहीं होते। यश कीर्ति के उदय सहित पूर्ववत एक ही भंग होता है, यानी पर्याप्त बादर पर्याप्त उनको वो यश कीर्ति ऐसे दोनों है, परंतु यश कीर्ति की तरफ से हम भंग देख रहे, तो उसमें एक ही बादर पर्याप्त, इससे भंगों का योग पांच हुआ। शंका, यह 25 प्रकृति वाला उदय स्थान किस स्थान में होता है? किस स्थान में, किस काल में, जिसको हमने कालों के नाम दिए थे? तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के प्रथम समय से लेकर आन पान पर्याप्ति अपूर्ण रहे के अंतिम समय तक के स्थान में यह उदय स्थान होता है, उसको हमने शरीर पर्याप्ति काल कह दिया था। यह उदय स्थान कितने काल तक रहता है? जघन्य और उत्कृष्ट से इस उदय स्थान का अंतर्मूर्त काल है। अब 38 पृष्ठ पर आते हैं। आन पान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए उसी जीव के, यानी उनके श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर, पूर्वोक्त 25 प्रकृतियों में उच्छ्वास के मिला देने पर, उच्छ्वास नाम कर्म का उदय यहाँ पर शुरू हो जाता है, 26 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। यह 26 प्रकृति वाला उदय स्थान किसके होता है? उसका समाधान, आन पान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए एकेंद्रीय जीव के यह 26 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। यह कब तक रहेगा ब्रह्मा? हाँ, अभिमरण समय तक रहेगा है। यह उदय स्थान कितने काल तक रहता है? जघन्य से अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट से अभी एकेंद्रिय में एक भव लिया, हाँ 22, उसमें कम करना ना पहला अंतर्मूर्त कम करना, उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त से हीन 22,000 वर्ष तक यह उदय स्थान रहता है। अंतर्मूर्त क्यों कम किया? क्योंकि वो उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने के लिए अंतर्मूर्त लगाता, उसके बाद इसका उदय शुरू हुआ ना। ये काल कब से शुरू हुआ? उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर। ये उदय स्थान कब शुरू हुआ 26 वाला? शरीर पर्याप्त, सॉरी उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने तक। अब जो रिमेनिंग उसकी लाइफ है उसको कौन सा काल कहेंगे? यानी उसका यही उदय स्थान है ना 26 वाला। यहाँ पृथ्वी वाली बात, इस पृथ्वी का एक काल है क्योंकि एक केंद्र में इसकी उत्कृष्ट आयु है, इसलिए एक आयु लिए इसके मरण समय तक। अंतर्मूर्त आयु वाला होगा तो अंतर्मूर्त रहेगा। यहाँ पूर्ववत 5 ही भंग होते हैं, यानी अयश कीर्ति के साथ बादर और सूक्ष्म और प्रत्येक और साधारण और यश कीर्ति का एक भंग। यानी तो ये तो जो हमने देखा 21, 24, 25 और 26, ये उद्योत रहित वाले, आतप रहित और उद्योत रहित वाले उनकी बात बताई। अब उसके साथ आतप और उद्योत को मिलाकर कैसे हो सकते हैं उसकी बात यहाँ बताएंगे। देखो 38 पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ है ना। अब आतप और उद्योत नाम कर्म प्रकृतियों के साथ होने वाले एकेंद्रिय के उदय स्थानों को कहते हैं। इनमें 21 और 24 प्रकृति वाले उदय स्थानों की पूर्ववत प्ररूपणा करनी चाहिए। देखो जिसको आतप या उद्योत है वो पर्याप्त नाम कर्म वाले ही होंगे, यानी उसमें वो पर्याप्त पर्याप्त वाला भंग नहीं होगा, पर्याप्त वाला ही भंग। क्योंकि आतप या उद्योत का उदय कब होगा? पर्याप्त होने पर, शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर, यानी पर्याप्त जीवों के ही वो है। तो विग्रह गति में भी उनके पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय है। आतप और उद्योत बादर में होता है, सूक्ष्म में नहीं होता, इसलिए सूक्ष्म भी, सूक्ष्म या बादर वो भी निकाल देना, पर्याप्त पर्याप्त वाला वो भी भंग निकाल देना। देखो इसको फिर पढ़ते हैं। इनमें 21 और 24 प्रकृतियों वाले उदय स्थानों की पूर्ववत प्ररूपणा करनी चाहिए। विशेषता केवल इतनी, विशेषता ने डिफरेंस, उक्त दोनों उदय स्थानों के यश कीर्ति और अयश कीर्ति प्रकृतियों के उदय सहित केवल दो दो ही भंग होते हैं। क्योंकि ये बादर और पर्याप्त जीव है, उसमें यश या अयश ये दो ही विकल्प होंगे, इसलिए वहां दो ही भंग है। क्योंकि जिन जीवों के आतप और उद्योत का उदय होने वाला है, बाद में होगा परंतु पहले से वो पर्याप्त नाम कर्म वाले हो गए ना, उनके सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण शरीर इन प्रकृतियों का उदय नहीं होता। किंतु ये दो दो भंग पूर्वोक्त 21 और 24 प्रकृति संबंधी उदय स्थानों में पाए जाते हैं, अतः उन्हें निकाल देना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? हमें टोटल एकेंद्रियों के भंग देखना है। जब हमने 21 और 24 के भंग देखे थे, आपको याद है ना, 5 और 9 बताए थे, तो उसमें ऐसा ये भंग वो भी वहाँ इंक्लूड कर ही था, यश कीर्ति वाला, पर यश कीर्ति के साथ बादर पर्याप्त वाले तो लिए, दोनों ही लिए थे, तो उसमें इंक्लूड हो गए, इसलिए यहाँ उसको अलग से नहीं गिनाएंगे, क्योंकि ये पुनरुक्त है, रिपीटेड है, इसलिए उनके अलग से उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ लिखा ना, ये दो दो भंग पूर्वोक्त 21 और 24 प्रकृति संबंधी उदय स्थानों में पाए जाते हैं, तो उन्हें निकाल देना चाहिए। निकाल देना चाहिए, उसको फिर दोबारा नहीं गिनना। अब पुनः शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के, यानी वही जीव लिया अभी, कौन सा है? उसका आतप या उद्योत का उदय होने वाला है। पहले उसके 21 का स्थान था, 24 का स्थान था। अब कहते अभी उसको शरीर पर्याप्ति होने पर क्या क्या होता है, परघात तथा, यानी उसमें से एक प्रकृति है परघात और दूसरी आतप होगी, जिसको आतप वाले उसको आतप होगी, उद्योत वाले के लिए उद्योत होगी। इन दोनों में से कोई एक इस प्रकार दो प्रकृतियों को पूर्वोक्त 24 प्रकृतियों में मिला देने पर, अभी 39 पेज पर आना, 25 प्रकृतियों वाले उदय स्थान का उल्लंघ कर 26 प्रकृति वाला उदय स्थान उत्पन्न होता है। हमने 24 वाला 25 होता है ऐसा देखा था, अब ये 24 वाला 26 हो जाएगा, क्योंकि परघात और आतप या किसी को परघात और उद्योत आ गए। तो यह 26 प्रकृति वाला उदय स्थान किसके होता है, शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए एकेंद्रीय जीव के होता है। इस 26 प्रकृति वाले उदय स्थान का समय कितना है, जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल तक, क्योंकि ये जीव पर्याप्त ही है, उनके भी उच्छ्वास का उदय चालू होगा थोड़ी देर में। यहाँ यश कीर्ति अयश कीर्ति तथा आतप और उद्योत के विकल्प से चार भंग, यानी किसी के आतप है किसी के उद्योत है, इन चार भंगों को प्रथम 26 प्रकृति वाले उदय स्थान संबंधी 5 भंगों में मिला देने पर 9 भंग होते हैं। यानी 21 और 26 24 वाले वो 5 थे ना इसके, अब यहाँ 9 हो जाएंगे। अब आन पान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए उसी एकेंद्रीय जीव के, यानी जो आतप या उद्योत वाला है उसी की बात है, उक्त 26 प्रकृतियों में उच्छ्वास को मिला देने पर 27 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। यहाँ यश कीर्ति अयश कीर्ति और आतप उद्योत के विकल्प से 4 भंग है। तो इन्होंने एकेंद्रियों में टोटल भंग कितने हैं, उद्योत सहित वाले भी या रहित वाले भी या तब की, उसकी बात यहाँ उन्होंने चार्ट बनाए। देखो समस्त एकेंद्रियों के सब उदय स्थान संबंधी भंगों का योग, योग यानी टोटल 32 होता है। ये कैसे लिए, देखो उन्होंने आतप उद्योत रहित पहले बता रहे, 21 प्रस्थान है प्रकृतिक, यानी 21 प्रकृति वाला स्थान, उसमें 5 भंग बताए थे, बादर या सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त के वो यश के साथ, और यश के साथ एक लिया था बादर पर्याप्त वाला, वो 5 हुए थे। 24 के स्थान में 9 भंग हुए थे, 9 भंग इसलिए हुए तो यहाँ तो प्रत्येक या साधारण ये भी आ गए थे, इसलिए उसके 8 और एक 9 भंग हो गए। 25 वाले स्थान वो तो पर्याप्तों के ही हो गए, यहाँ इसमें भी बादर या सूक्ष्म और पर्याप्त ही होते हैं ये। हाँ यश अयश की यश अयश भी है ना, और प्रत्येक साधारण है, ये प्रत्येक साधारण बादर सूक्ष्म ऐसे 4 बंगल यश अयश के साथ, और यश के साथ एक वाला, और वही 5 आगे भी चलेंगे। देखो बाद में आतप और उद्योत सहित वाले लिए, उसमें जो 2 भंग बताए वो ऊपर के 2 में 5 में इंक्लूड कर दिए थे, इसलिए उसको अलग से नहीं गिनेंगे। 24 वाले भी जो 2 है वो भी ऊपर के इंक्लूड किए थे, उसको अलग नहीं गिनेंगे। 26 वाले 4 हो गए और 27 वाले 4 हो गए, यानी 4-4 कैसे बने, यशे अशव आतप्य उद्योत, इस तरह से 4-4 भंग होते हैं, सबकी टोटल मिलकर 32 हो जाती है। अब यहाँ विशेषात पढ़ते फिर हम कर्मकांड की भी बात थोड़ी पढ़ ले लेंगे। देखो गोमठ सार कर्मकांड की 588 आदि गाथाओं में जो उदय स्थान बतलाए गए हैं, उनमें 21 और 24 प्रकृति के उदय स्थानों में आतप उद्योत प्रकृतियों के उदय का कहीं उल्लेख या संकेत नहीं किया गया, क्योंकि वो सेम होते हैं दोनों के लिए, इसलिए उसका संकेत नहीं, क्योंकि जो पर्याप्त होने वाले हैं उन्हीं के वो स्थान होते हैं, अपर्याप्त उनके होते ही नहीं है। विग्रह गति में वह अपर्याप्त अवस्था में इन प्रकृतियों का उदय भी संभव नहीं प्रतीत होता, यानी उनका उदय तो शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर होता है। धवलाकार ने स्वयं पृष्ठ 38 पर दोनों प्रकृतियों के साथ अपर्याप्त प्रकृति के उदय का अभाव बतलाया है। अतएव यहाँ पर ऐसा अर्थ लेना चाहिए जिन एकेंद्रिय जीवों के आगे चलकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाने पर आतप या उद्योत प्रकृति का उदय होने वाला है, उनके सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियों का उदय नहीं होगा, अतएव तत्संबंधी भंग भी उनके नहीं होंगे। क्योंकि जो विग्रह गति में जिनका पर्याप्त का उदय है वगैरह वगैरह, वो सब बातें उसमें लागू हो जाती हैं। केवल यश कीर्ति और अयश कीर्ति के विकल्प से दो दो ही भंग होते हैं। अब ये एकेंद्रीय की बात हमने पढ़ी, अभी थोड़ा कर्मकांड के आधार से देख लेते हैं। अभी उन्होंने 588 कुछ गाथा बताई थी ना, पेज नंबर है नाम कर्म के उदय 563 से शुरू होता है, 564 ले वहीं से पढ़ेंगे। मैं यहाँ हिंदी वाला 564 पेज है, हाँ, और 583 गाथा है, इसमें लिख के रखते हैं। पेज 564 वहाँ का नंबर हमने डाला था पहले उसमें, हाँ, गाथा 583 यहाँ उसका अच्छा वर्णन किया है, वहां से पढ़ते हैं। मैं अभी कर्मकांड पुस्तक दूसरी पेज नंबर 564 वहां से पढ़ रही हूँ। नाम कर्म के उदय स्थान जिस जिस काल में उदय योग्य है वहां ही होते हैं, इसलिए नियत काल है, निश्चित काल है। नाम कर्मों के उदय निश्चित काल में ही होते हैं। किस कर्म का उदय कौन से काल में होता है ये निश्चित है। वे काल अनुक्रम से 5 है, क्योंकि पहले विग्रह गति होगी, बाद में ऐसे, इस तरह अनुक्रम बताए। विग्रह गति और कारमान शरीर में, कारमान शरीर इसलिए लिया कि संयोग केवली में विग्रह गति नहीं होती, वहां तो प्रतर लोकपूर्ण और प्रतर में कारमान का योग है, इसलिए कारमान शरीर लिया। दूसरा मिश्र शरीर में, तीसरा शरीर पर्याप्ति में, चौथा श्वासोच्छ्वास यानी आनपान पर्याप्ति में, और पांचवा भाषा पर्याप्ति में। अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। जहां कारमान शरीर पाया जाता है वह कारमान काल, यानी कारमान का योग जहां हम कहते हैं। कारमान शरीर तो सर्वत्र है, परंतु वह तो विग्रह गति में या वो समुद्घात केवली में कारमण का योग पाया जाता है। जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक शरीर मिश्र काल, इसको मिश्र शरीर भी कहते हैं, शरीर मिश्र भी कहते हैं, दोनों ओर से कथन आता है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर, जब तक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक शरीर पर्याप्ति काल, और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर, जब तक भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति काल, इसी को आन पान पर्याप्ति काल कहते हैं। भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात सर्व अवशेष आयु प्रमाण यानी मरण तक भाषा पर्याप्ति काल कहते हैं। यहाँ विग्रह गति और कारमान ये दो विशेषण कहे हैं, वे समुद्घात केवली के कारमान के ग्रहण के निमित्त कहे हैं। यानी वहाँ पांचों कालों के नाम बताए उन्होंने और वो कहाँ से कहाँ तक है उसकी भी बात बताई। अब 584 की टीका, उन पांचों कालों का प्रमाण क्रम से विग्रह गति के कारमान शरीर में 1, 2 या 3 समय है। ये तीन समय वो केवली के भी गठित हो जाते हैं और बाकी एक दो तो होते ही है। अपर्याप्ति रूप मिश्र शरीर में, शरीर पर्याप्ति में, श्वासोश्वास पर्याप्ति में अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त काल है, यानी विग्रह गति वाला ये एक दो या तीन समय है, बाकी तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त काल है। और भाषा पर्याप्ति उसके से आयु, जितनी आयु शेष आयु है उतना है। भाषा पर्याप्ति में पूर्वोक्त चार काल का प्रमाण घटाने पर अवशेष सर्व भुज्यमान आयु प्रमाण काल जानना, ये तो आसान है ना समझने। उन पांच कालों को जीव समासों में कहते हैं, यानी किसको कितने काल होते हैं, ते वे काल सर्व लब्धि अपर्याप्तों को, जो एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक हो, द्विंद्रिय या पंचेंद्रिय हो, जो जो लब्धि अपर्याप्तक होते हैं उसकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तो मिश्र शरीर काल में मरण होता है, तो उनके आदि के दो ही है। आदि के दो यानी कौन से, विग्रह गति काल और मिश्र शरीर काल। एक इंद्रियों में आदि के चार है और त्रसों में पांचों है, यानी एक इंद्रियों में कहने से पर्याप्तों में। आहारक शरीर में पहले बिना ऊपर के चार काल है, देखो क्या कहना है, जो आहारक शरीर बनाता है वो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज है, औदारिक शरीर सहित विद्यमान है, उनका औदारिक शरीर संबंधी भाषा पर्याप्ति काल चल रहा है। अब वो औदारिक आहारक शरीर बनाएंगे, तो आहारक शरीर बनाएंगे तो उसमें भी ये काल नाम कर्म का उदय तो शुरू होता है ना, वहां पर भी तो उसमें भी शरीर मिश्र काल, फिर शरीर पर्याप्ति काल, ये सब उसमें लगा लेना, तो उनमें चार हो जाएंगे, विग्रह गति वाला काल में नहीं होगा। अब नीचे 86 की टीका, समुद्घात केवली में कारमाण, ये प्रतर लोकपुरण और प्रतर में कारमाण है, औदारिक मिश्र कपट में, औदारिक शरीर पर्याप्ति यानी फिर मूल शरीर में एंटर होते प्रवेश होता है, औदारिक शरीर पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, ऐसे पांच काल अनुक्रम से होते, यानी केवली में भी ये पांच अलग अलग नाम कर्मों के उदय स्थान हो गए। ये पांचों काल प्रदेशों को समेटते हुए ही है, फैलाते समय तीन ही काल है, वही बताएंगे। दंड करने और समेटने रूप युगल में औदारिक शरीर पर्याप्ति काल है, कपाट करने और समेटने रूप उदय में औदारिक शरीर मिश्र काल है, प्रतर के करने और समेटने तथा लोकपूर्ण में कारमाण काल है। इस तरह फैलाते समय तीन ही काल है, यानी नाम कर्म के उदय रूप अवस्था की अपेक्षा काल बता रही है, और समेटते हुए, समेटने हुए, समेटते हुए मूल शरीर में प्रवेश करने के प्रथम समय से लेकर संगी पंचेंद्रियवत अनुक्रम से पर्याप्ति पूर्ण करता है, यहाँ पर भी पर्याप्ति पूर्ण करती है, संयोग केवली विग्रह सॉरी समुद्घात करके वापस मूल शरीर में आते हैं तो वहां पर भी उनकी पर्याप्तियां होती है, फिर दोबारा इसलिए पांचों ही काल पाए जाते हैं। आगे नाम कर्मों के उदय स्थानों का क्रम से उपजने का विधान कहते हैं। उसमें बोलो
समुद्घात के पश्चात जो शरीर में प्रवेश करेगा वहां पे वापस पांचों काल होंगे?
नहीं नहीं नहीं, वापस पांचों कैसे हो गए?
नहीं तो वही मैं पूछ
रहा हूं, पांच कहां से गिनना, लोकपुरण में था तब विग्रह गति वाला कारमाण काल था, जब कपाट में औदारिक मिश्र वाली बात होती है तब मिश्र शरीर काल हुआ, उन कर्मों का उदय हुआ, फिर शरीर शरीर हाँ पर्याप्त आहारक शरीर काल बताया ना वहां पर, और फिर उनकी पर्याप्ति हो जाएगी, उच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति और हो जाएगी,
एक साथ हो जाएगी,
एक साथ कैसे होगी, क्रम से होती है, उनके भी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में एक एक पर्याप्ति हो जाती है, केवल वो मिश्र वाली एक समय वाली है, बाकी तो तीन पर्याप्ति, तो बाकी पर्याप्ति तो उनकी अंतर्मूर्त वाली ही होगी। यहाँ लिखा ना संगी पंचेंद्रियवत अनुक्रम से पर्याप्ति पूर्ण करता है, उसका अर्थ अभी हमने क्या पढ़ा देखो 566 पेज पर फिर देखना सेकंड लाइन में क्या लिखा है। मूल शरीर में प्रवेश करने के प्रथम समय से लेकर संगी पंचेंद्रियवत अनुक्रम से पर्याप्ति पूर्ण करता है ना। उनके सभी पर्याप्ति नहीं होगी, अभी इंद्रिय पर्याप्ति वगैरह नहीं होती है वैसे, वो हमने देखा था उनके कुछ तीन ही पर्याप्ति होती है, क्योंकि मिश्र वाली बात तो उनकी एक समय में पड़ गई कपाट में, दंड में आए तो औदारिक कायोग भी चालू हो गया है वहां पर, यानी वहीं पर शरीर पर्याप्ति एक समय में ही हो गई ऐसा हम कहेंगे उसके लिए, बाद में दो पर्याप्ति होगी उच्छ्वास और भाषा पर्याप्ति। अब हम 588 उन्होंने जो नंबर बताया था ना वहां पर, ये बात यहाँ देखते, देखो वहां तो जो हम ऑर्डर थी वो नाम कर्म के जिस क्रम से हमने प्रकृतियां याद की थी उस क्रम से वहां गिनाई है, और यहाँ वो ध्रुवोदयी को अलग निकाली है, ये आसानी से याद रख सकते हैं। देखो अभी इसको पढ़ेंगे यहाँ से, पहले 12 ध्रुवोदयी प्रकृतियां बताते हैं। तेजस शरीर कार्मन शरीर वर्णादि 4, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ अगुरु लघु और निर्माण, ये 12 प्रकृतियां ध्रुवोदयी है, सब जीवों के इनका निरंतर उदय पाया जाता है, यानी विग्रह गति से लेकर मरण तक इसका उदय है ही है। पुनश्च अब ऑप्शनल कहाँ लेना, 4 गति में से 5 जाति में से त्रस स्थावर में से बादर सूक्ष्म में से पर्याप्त अपर्याप्त में से, देखो विग्रह गति में भी ये लेना है, प्रत्येक साधारण इसको छोड़ दिए यहाँ पर, सुभग दुर्भग में से आदे अनादे में से यशस्कीर्ति कीर्ति अयशस्कीर्ति में से 4 अनुपूर्वी में से एक एक का उदय होता है। देखो जो त्रसादि 4 में से हमने 3 लिए यहाँ पर, किसको छोड़ा, प्रत्येक या साधारण को छोड़ा, और स्थिरादि 6 लेते हैं ना युगल, उसमें से स्वर को छोड़ा, क्योंकि सबके नहीं होता है, और बाकी गति जाति और अनुपूर्वी उसको तो लेना ही लेना है। नहीं होता ना इसलिए उसको नहीं लेना, 5 युगल में से लेना, उसमें से 2 युगल तो हमने फिक्स लिए ध्रुवोदयी में ले लिए, कौन से स्थिर स्थिर शुभ अशुभ, तो कितने रह गए, 2 युगल है ना, चारों प्रकृति हमने ले ली और स्वर को लेना नहीं है, तो 3 युगल का ऑप्शन लेना, दुर्भग सुभग आदे अनादे यश कीर्ति अयश कीर्ति ऑप्शन रहेगा। अभी वो किस में रहता है क्या, वो हमने अभी जो भंग देखे ना, हमने अभी भंग देख के आए ना एक इंद्रियों में, यानी वो पहली 12 और ये 9, ये 21 प्रकृति रूप स्थान जो है, क्योंकि इसमें गति जाति और अनुपूर्व ये तो लेना है, बाकी संस्थान नाम कर्म प्रत्येक साधारण वगैरह शरीर वगैरह वो वहां जाने पर शुरू हो जाएगा शरीर ग्रहण करने के पहले समय से। अब आगे देखते हैं 589 की टीका, उस 21 के स्थान में से अनुपूर्वी घटाकर और औदारिकादि 3 शरीरों में से एक, अब ये इन जनरल बात है, औदारिकादि 3 शरीर में से कौन से औदारिक होगा वैकृत होगा या आहारक बनाने वालों के आहारक होगा, इसलिए 3 में से एक, 6 संस्थान में से एक, संस्थान नाम कर्म का उदय यहाँ चालू हो जाता है जब शरीर ग्रहण करते हैं, प्रत्येक शरीर साधारण शरीर में से एक और उपघात, ये 4 मिलाने पर 24 का स्थान होता है, यानी ये 4 तो मिलते ही है भले वो एकेंद्रीय हो या पंचेंद्रीय हो, ये त्रस हो या स्थावर हो, तो त्रसों में और अंगोपांग भी मिलेगा एक, तो एकेंद्रियों के 24 का होगा, अंगोपांग मिलाने पर आहारक के और देवनारकी के 25 का होगा, और मनुष्य तिरियंचों में सहनन मिलाने से 26 का होगा इसी स्थान पर। तो यह स्थान त्रस और स्थावर जीवों के शरीर मिश्र काल में उदय रूप होता है। अब आगे ये पूर्वोक्त चार और तीन अंगोपांग में से एक अंगोपांग, किसमें अभी त्रसों में अंगोपांग मिला देंगे, और छह सहनन में से एक मनुष्य तीर्यंच हो गए उनमें सहनन मिलाएंगे। ऐसी छह प्रकृतियां मिश्र शरीरी त्रस में उदय योग्य है। परघात प्रकृति त्रस स्थावर जीवों के शरीर पर्याप्ति काल में ही उदय रूप होते हैं। वो तो शरीर पर्याप्ति होने पर परघात, तो वो भले स्थावर हो या त्रस हो, परघात का उदय होगा ही होगा। स्थावरों में और क्या होगा, आतप या उद्योत भी होगा उसको, पुनश्च आतप उद्योत और प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति, यानी त्रस हो गए तो उसमें प्रशस्त या अप्रशस्त विहाय गति का भी उदय होगा। त्रसों में उद्योत भी हो सकती है और त्रसो या स्थावर परघात तो होती होती है, यानी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर परघात तो सबको उदय होगा, स्थावर हो या त्रसो। आतप और उद्योत एक इंद्रियों में ऑप्शनल है, किसी के होगी पंचे, यानी बाकी तीर्यंचों में उद्योत हो सकती है, द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी के भी पर्याप्तों के, और विहाय गति भी होगी द्विंद्रिय से लेकर सबको विहाय गति होगी, किसी को अप्रशस्त होगी किसी को प्रशस्त होगी। तो कहते वो अविरुद्ध और योग्य त्रस और स्थावरों के, अविरुद्ध और योग्य ने किसके हो सकती है वो हमने देखा, पर्याप्तों के होती कि नहीं होते ये जो कुछ बातें वो सब, पर्याप्त प्रकृति काल में ही उदय रूप होती है। उच्छ्वास और स्वरद्विक प्रकृतियां अपने अपने पर्याप्ति काल में उदय होती है, यानी उच्छ्वास पर्याप्ति के काल में उच्छ्वास का उदय होता है और भाषा पर्याप्ति पूर्ण होते ही स्वर नाम कर्म का उदय चालू होता है। तीर्थंकर प्रकृति केवली में ही उदय रूप होती है, जब केवली के उदय रूप स्थान कहेंगे, केवल ज्ञान होगा तो ऑलरेडी उनकी भाषा पर्याप्ति काल चल रहा था थ्रू आउट, क्योंकि उन्होंने जब बहुधारण किया तब उनके सब काल हुए थे, अब वो तीर्थंकर हुए तो पहले भाषा पर्याप्ति काल में जितने उदय रूप थी अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय और चालू हो गया उस काल में, तो उतने उसके उदय रूप रहेंगे। फिर वो अगर समुद्घात करते हैं तो उसमें भी अन्य जीवों के वो अनुपूर्वी छोड़कर 20 का उदय होता है उनके, इनको तीर्थंकर प्रकृति जोड़ देंगे तो उनका भी 21 का उदय होगा। अभी उसकी डिटेल बाद में बताएंगे, पहले कहाँ किसके कितने होते वो बात बता रहे हैं। अब देखते एक एक जीव के एक एक काल में पाए जाने वाले नाम कर्म के उदय स्थान नाना जीवों के प्रति कहे उन्हीं को कहते हैं, यानी वो कितने कितने उदय काल टोटल हो सकते हैं उसको यहाँ उन्होंने टोटल गिनाया। उसमें तो उन्होंने भी हाँ इसमें 20 का भी लिया। अब 20 वाला किसको होगा, सामान्य केवली को समुद्घात में होगा, ये क्लियर करना चाहिए। 21 का तो हमने देखे सबको विग्रह गति में होता है, 24 का एक इंद्रियों में वहाँ शरीर धारण करने के पहले समय से होता है, इससे एक एक अधिक वो हमने देखा 25 का होता है किसी, 26 27 28 29 30 31 तक के स्थान हो गए सबके तक का, और लास्ट में देखो 568 9 का और 8 का, ये 12 नाम कर्म के उदय स्थान है। ये 9 का और 8 का नाम कर्म के उदय स्थानों में 9 का किसको होगा और 8 का किसको होगा, आपको याद आता है कुछ खा लाता है ब्रह्मा, हाँ उसमें है ना 568 पेज है ना, नहीं नेक्स्ट पेज निकालो, टोटल नाम कर्म के उदय स्थान गिना है उन्होंने। देखो 14वें गुण स्थान में टोटल वहां 12 प्रकृति उदय रूप हो सकती है तीर्थंकर प्रकृति सहित, जिसके तीर्थंकर प्रकृति का उदय है उसमें नाम कर्म की तो 9 हो जाएगी, और जिसको तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है उसके 8 हो जाएगी। गिनाएंगे आप 14वें गुणस्थान में क्या क्या उदय रूप है, मनुष्य गति पहले कहो ना, गति जाति ये सब मिट गए, संस्थान वर्ण रस सब अरे उदय विच्छेद हो गई सगय योगी में, देखो गति है जाती है, त्रस है बादर है पर्याप्त है, प्रत्येक मिट गया, प्रत्येक मिट गया हाँ, पर्याप्त, फिर यशस कीर्ति है ना, और तीन रह गया ना, एक उसमें से एक साता भी ने नाम करो, सुबह सुबह का लेना, सुबह और आदेय रह गए हमारे, और तीर्थंकर फिर से मनुष्य गति है पंचेंद्रिय जाति है हुँ? फिर त्रस बादर पर्याप्त, ये तीन लेना, फिर वो स्थिरादि में से सुभग आदेय यशस कीर्ति और तीर्थंकर, ये नौ हो गए। अभी इसमें तो बहुत डिटेल में है, अभी आपको एक बताती हूँ, पेज नंबर 573 पर निकालना या 572 पहले निकालो, उसमें एक टेबल यंत्र बनाए उन्होंने कर्मकांड में, पेज नंबर 572 572। अभी आप 69 पर थे ना, 72 को निकालना, नीचे है देखो टेबल, अभी ये काल नीचे से ऊपर पढ़ना, कारमाण में शरीर मिश्र में शरीर पर्याप्ति में ऐसा ऐसा है ना, अभी सब पांचों कालों के नाम पहले कॉलम में बताए हैं, दूसरे कॉलम में एकेंद्रिय लिखा है, तो एकेंद्रिय में नीचे पढ़ो, 21 वाला स्थान विग्रह गति में है, 24 वाला वो शरीर मिश्र में, अब वहाँ 25 भी लिखा है और 26 भी लिखा है, यानी सामान्य से तो सबको 25 तो होगा ही, आतप या उद्योत होगा तो 26 का यहाँ पर हो जाता है, और उच्छ्वास पर्याप्ति में 25 वाला 26 होता है, वो 26 वाला 27 होता है, इसलिए दो दो ऑप्शन लिए, उनमें भाषा पर्याप्ति काल नहीं है। अब देखो देवों के गिनाए, उनके भी 21 वाला स्थान है, 21 में से एक अनुपूर्वी घटा दो देवों की, और फिर उसमें क्या मिला देंगे, वैकृत शरीर वैकृत अंगोपांग उपघात और उनका समचतुर संस्थान और एक प्रत्येक शरीर संस्थान बता दिया, प्रत्येक शरीर ये पांच मिला, 25 वाला हो जाएगा वहां पर, फिर शरीर पर्याप्ति में 27 कैसे होगा, क्या होगा मिलते हैं उसमें, परघात और प्रशस्त विहाय गति, आतप उद्योग देवगति में कहां से हाँ, फिर उच्छ्वास मिलाने पर 28 और स्वर सुस्वर नाम कर्म मिलाने पर 29, नारकी में वो सारे अप्रशस्त गिनाने, उनमें भी ऐसे ही है, 21 का 25 27 28 29। तीर्यंच में, अब एक तीर्यंच में से एक इंद्र को जुदा निकाला था, अब उनका 21 का स्थान था, 21 में से 26 होता है, देवों में सहनन नहीं था, यहाँ सहनन लिया तो 26 हो गया, 26 वाले फिर 28 हो जाते हैं, 28 या 29 किसी को उद्योत का उदय है तो 29 हो जाते हैं, 28 वाला उच्छ्वास में 29 होगा और भाषा में 30 हो जाएगा, और उद्योत वाला जो है वो जहाँ पर उसने शरीर पर्याप्ति में 29 हुआ वो 30 और 31 हो जाता है। मनुष्यों में देखो, मनुष्यों में तो 21 का विग्रह गति में था, फिर 26 हुआ यानी कानूपूर्वी गई, औदारिक औदारिक अंगोपांग प्रत्येक शरीर और फिर उपघात एक सहनन और संस्थान, ये 6 आ गए तो 26 हो गए, 26 के बाद शरीर पर्याप्ति में परघात और विहाय गति आ गई, फिर उच्छ्वास नाम कर्म और फिर स्वर नाम कर्म। अब सामान्य केवली में समुद्घात में 20 है, तीर्थंकर बिना 20 है, क्योंकि अनुपूर्वी का उदय जो विग्रह गति में वो यहाँ नहीं लेना, 20 के बाद वो 26 हो तो नीचे लौटते समय की बात है, फिर 28 29 और 30 हो जाता है, केवल वो उसमें वो 21 था विग्रह में 20 है, वो इतना डिफरेंस है, तीर्थंकर में एक एक प्रकृति मिला देना, वो 21, 27, 29, 30 और 31 हो जाता है। विशेष मनुष्य का अर्थ होता है वो आहारक, आहारक शरीर बनाते तब, उसके लिए कारमान का योग नहीं होता, डायरेक्ट 25 वाला स्थान होता है, फिर 27, 28 और 29 होता है। इस तरह ये टेबल में उन्होंने सारों के ही स्थान बता दिए। अब बाद में जो 573 पर जो है ना आगे, तो उन्होंने 21 वाला किसको है, 21 वाला किसको है, 20 वाला किसको है, वो तो उसके जो अनेक लोगों को होते हैं उसकी बात वहां उन्होंने गिनाई है। जैसे वो टेबल देखो आपका 572 वाला, उसमें 20 वाला एक ही स्थान है, किसको है वो, समुद्र सामान्य केवली को। 21 वाला स्थान किस किस को है, सबको विग्रह गति में, और तीर्थंकर को समुद्रघात में। आप वहां देखकर डिराइव कर सकते हैं। देखो कर्मकांड को ही हम देख रहे थे, अब 24 वाला स्थान बताओ मुझे, वो एक इंद्रियों को मिश्र में है केवल। 25 वाला स्थान अभी ब्रह्मा आप बताओ, वो उसमें मत देखो, वो पहला टेबल देखो, यहाँ ये कंफ्यूजन होगा। नहीं नहीं 25 वाला देखो, एक इंद्रियों को शरीर पर्याप्ति में है, और कहाँ पर है देखो, देव नारकी को शरीर मिश्र में है, और आहारक वाले को भी शरीर मिश्र में है, समझ में है ना। अब 26 वाला, एक इंद्रिय आतप या उद्योत वाले के शरीर पर्याप्ति काल में है, या अन्य जीवों को उच्छ्वास पर्याप्ति में भी है। 26 वाला मनुष्य तीर्यंचों को मिश्र शरीर काल में है, और सामान्य केवली को भी है। इस तरह से ये सब यही आगे के पेज पर कौन से उसका नंबर ऑफ प्रकृति गिनाई है, वो कहाँ कहाँ हो सकती है, उसकी सब बातें इसमें बताई। यानी 27 का कि कहाँ होगा, क्या वो किस तरह से डिराइव करना, वो सब हमने विस्तार से पढ़ा था। अभी अपने पेज पर आना, अपना धवला में आ जाना वापस। वैसे मूल में वहां से पूरा ही विषय पढ़ने योग्य, बहुत विस्तार, बहुत डिटेल में बताया वहां पर। अभी तो ये समझ में ना, हमने एक इंद्रिय के जो भंग वगैरह देखे थे, अब हम यहाँ विकलेंद्रिय की बात पढ़ेंगे। पेज नंबर 40 पर धवला में अब विकलेंद्रिय में तो हमें ख्याल में आया, विग्रह गति में तो 21 का होगा। विकलेंद्रिय कहने से द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, यानी वो तीरेंच गति के जीव हैं। तो जब विग्रह गति से आएंगे तो विकलेंद्रिय तो उसमें भी पर्याप्त पर्याप्त वाला भेद है। अब उसमें बादल सूक्ष्म या प्रत्येक साधन वाला भेद नहीं है, तो विग्रह गति में दो ही ऑप्शन होंगे, कोई पर्याप्त नाम कर्म वाले होंगे, कोई अपर्याप्त नाम कर्म वाले होंगे। पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो वहां जाने पर, अभी उनके गति तीरंज गति है, दिन दिन जात्री है, जो अपनी जाति है उसको कहेंगे। फिर प्रत्येक शरीर ही है उनका, संस्थान में उनका हुंडक संस्थान कहेंगे हम, दिन दिन आदि को हुंडक संस्थान कहेंगे। और गति जाति शरीर, प्रत्येक शरीर बताया ना, संस्थान बताया, सहनन होगा उनका। अभी उनका तो हुंडक सहनन द्विंद्रियादि को, विकलेंद्रियों में 6 सहनन नहीं होते, ये 6 सहनन पंचेंद्रियों में होते। देखो हम यहां से पढ़ेंगे, उनमें तपुद्यो तो बाद में होगी, यहां तो 26 हो जाते उनके भी। उपघात हमने नहीं गिना था, उपघात को भी गिनना। देखो विकलेंद्रिय जीवों में सामान्यतः 21, फिर 26 का 28 हो जाता है, परघात और विहाय गति मिलती है, फिर 29 और 30 उच्छ्वास और स्वर, और 31 प्रकृतियों के, जिसको उद्योत होगा उसके लिए एक एक एडिशन गिनते जाना। संबंध से 6 उदय स्थान होते हैं, यही फिर अंकों में बताया। उद्योत के उदय रहित विकलेंद्रिय जीव के 5 उदय स्थान होते हैं, जिसको उद्योत नहीं है उसकी बात है, क्योंकि उसके 31 प्रकृतियों वाला उदय स्थान नहीं होता। उद्योत के उदय सहित विकलेंद्रिय के भी पांच ही उदय स्थान है, क्योंकि उसके परघात, उद्योत और प्रशस्त विहगति इन तीन प्रकृतियों का एक साथ प्रवेश होने के कारण 28 प्रकृतियों वाले उदय स्थान की उपपत्ति नहीं बनती। यानी उसके 28 के बदले 26 का 28 हुआ था, उसका 26 का डायरेक्ट 29 होता है, क्योंकि तीन प्रकृतियों का उदय उसका एक साथ हो जाता है। अब पहले उद्योतोदय से रहित द्विन्द्रिय जीव के उदय स्थान कहते हैं। उद्योत का उदय रहित है, इसका अर्थ है वो पर्याप्त भी हो सकता है और अपर्याप्त भी हो सकता है ना? हाँ। उनमें यह 21 प्रकृतियों वाला उदय स्थान है। अब 21 वाला बताते हैं। तीर्यंच गति, द्विन्द्रिय जाति, तेजस और कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, तीर्यक गत्यानुपूर्वी प्रायज्ञानुपूर्वी, अग्रु लघु, अद्विन्द्रिय है तो त्रस बादर और पर्याप्त और अपर्याप्त में से कोई एक लिया, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, ये तो ध्रुव दिए दोनों ही। अब द्विन्द्रिय है इसलिए दुर्भग और अनादेय लेना, परंतु यश कीर्ति और अयश कीर्ति में से कोई एक लेना, और निर्माण इन 21 प्रकृतियों का एक उदय स्थान होता है। ये समझ में आई बात? शंका, यह 21 प्रकृतियों वाला उदय स्थान किस जीव के होता है? यह उदय स्थान विग्रह गति में वर्तमान द्विन्द्रिय जीव के होता है। यह उदय स्थान कितने काल तक होता है? जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से दो समय तक रहता है। देखो इसका ही अर्थ क्या हुआ, भले वो एक इंद्रिय में से भी जीव द्विन्द्रिय आदि में क्यों न उत्पन्न हुआ है, उसको भी दो मोड़ से ज्यादा नहीं लगते, क्योंकि कारमान का योग लिया, कोई लोकाकाश के किसी भी कोने से द्विन्द्रिय में तो उत्पन्न हो भी सकता है, सूक्ष्म भी जीव आ सकता है उसमें, तो उसके दो मोड़ से ज्यादा नहीं लगते। यानी इसमें क्या सिद्ध हुआ, वे द्विन्द्रिय आदि में विग्रह गति काल में भी दो समय से ज्यादा नहीं है, विग्रह गति काल दो समय से ज्यादा नहीं। यानी इसी से शुरू, और हमने एक इंद्रिय में तो तीन समय तक को लिया था। उसमें एक दो या तीन समय लिया था। अब देखो उद्योदय से रहित अभी हमने देख लिया, अब लास्ट लाइन ये पढ़ा था ना, यहाँ आए थे हम, 41 पेज पर थे। नहीं नहीं नहीं, हाँ एक समय दो समय बताया था। अब यश कीर्ति के उदय के साथ एक ही भंग होता है, क्योंकि वो अपर्याप्त में नहीं पाया जाता। यहाँ दो ही ऑप्शन बताए ना, पर्याप्त अपर्याप्त, यश कीर्ति या अयश कीर्ति, तो यश कीर्ति के साथ एक ही भंग होगा, क्योंकि अपर्याप्त प्रकृति के उदय के साथ यश कीर्ति का उदय नहीं होता, और अयश कीर्ति के उदय सहित दो भंग होते हैं, क्योंकि पर्याप्त और अपर्याप्त के उदय के साथ अयश कीर्ति का उदय होना संभव है। ये समझ में आई बात? इस प्रकार यहाँ सब भंगों का योग तीन हुआ। अब एक इंद्रियों में बादर भी, सूक्ष्म भी थे, पर्याप्त भी अपर्याप्त भी थे, तो उनमें चार और यश कीर्ति का एक भंग करके पांच बताए थे, यहाँ तो तीन ही होते हैं। इन 21 प्रकृतियों में से आनुपूर्वी को निकाल कर, देखो अभी ये विग्रह गति में से वहां पहुंचा जहां शरीर धारण करना है, अब आनुपूर्वी का जो तीर्यंच आनुपूर्वी का उदय मिट जाएगा। शरीर ग्रहण करने के प्रथम समय में औदारिक शरीर, उंड संस्थान, औदारिक शरीर, अंगोपांग, असंप्राप्ता, सुपाटिका, सहन, एक ही सहन लिया ना, छह यहाँ नहीं लेना है, उपघात और प्रत्येक शरीर, इन छह प्रकृतियों को मिला देने पर 26 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। यहाँ भंगों का योग पूर्वोक्तानुसार तीन होता है, यानी पर्याप्त अपर्याप्तों में भी यही होते हैं, और उसमें यश कीर्ति और यश कीर्ति का भी ऑप्शन हो जाएगा। तो उसमें अयश कीर्ति में दो लिए और यश कीर्ति का एक लिया, इससे तीन हो गए इसमें भी। शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए द्विन्द्रिय जीव के, अभी 26 में से कितने हो जाएंगे उसके, परघात और अप्रशस्त विहाय गति मिला देना है उनके। तो शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए द्विन्द्रिय जीव के पूर्वोक्त 26 प्रकृतियों में से अपर्याप्त को निकाल कर, क्योंकि अपर्याप्तों के आगे के काल नहीं होते हैं, परघात और अप्रशस्त विहाय गति मिला देने पर 28 प्रकृति का उदय स्थान होता है। यहाँ यश कीर्ति के उदय सहित एक ही भंग है। और यश कीर्ति के उदय सहित भी एक ही भंग है, क्योंकि यहाँ भी प्रतिपक्षी प्रकृतियों का अभाव है, यहाँ सब भंग केवल। यह क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये शरीर पर्याप्ति किसके होगी? पर्याप्त नाम कर्मों के होगी। तो पर्याप्त नाम कर्म वाले के यश कीर्ति भी हो सकती है और यश भी हो सकती है, तो उसके दो ही बंगली है, ख्याल में है ना? क्योंकि यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त वाला भेद नहीं है, सारे पर्याप्तों के ही आगे के काल है। तो पर्याप्त जीवों में किसी को यश कीर्ति, किसी को यश कीर्ति, इसलिए दो बंगली है। आन प्राण पर्याप्ति से पर्याप्त हुए द्विन्द्रिय जीव के पूर्वोक्त 28 प्रकृतियों में उच्छ्वास मिला देने पर 29 प्रकृति के उदय स्थान होते हैं। यहाँ भी दो ही भंग है। कौन सा भंग है? यश अयश वाला। अब भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए द्विन्द्रिय जीव के पूर्वोक्त 29 प्रकृतियों में दुस्वर के मिला देने पर, क्योंकि द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुर्थ सबको दुस्वर ही में ले लेंगे, ये सुस्वर या दुस्वर का ऑप्शन पंचेन्द्रिय में लेंगे हम, 30 प्रकृतिक उदय स्थान होता है। यहाँ भी दो ही भंग होते हैं। यानी उद्योत रहित वाले के पहले तीन भंग लिए 21 में, 26 में भी तीन भंग लिए, फिर आगे 28, 29, 30 में वगैरह आगे दो दो भंग लिए। अब उद्योत के सहित जीवों की बात करेंगे यहाँ। उद्योत के सहित वाले के लिए हाँ, वो पर्याप्त नाम कर्म वाले ही होंगे। अब उद्योत के उदय सहित द्विन्द्रिय जीव के उदय स्थान कहने पर 21 और 26 प्रकृतिक उदय स्थान तो जैसे पहले कहे उसी प्रकार कहना चाहिए। इसमें क्या डिफरेंस होगा, विशेषता क्या होगी? यहाँ पर्याप्त पर्याप्त में प्रशस्त प्रशस्त विहार, सॉरी यश कीर्ति यश कीर्ति दो ही भंग हो गए, यश यश की यानी यश का एक भंग और अयश का एक भंग, क्योंकि पर्याप्त के साथ लगाना। हाँ, फिर 26 के ऊपर यानी 26 के बाद उनके क्या होगा? परघात, उद्योत और अप्रशस्त विहाय गति, इन तीनों को मिला देने पर 29 प्रकृतिक उदय स्थान होता है। यानी यहाँ अप्रशस्त विहाय गति ही लेना है यहाँ पर। यहाँ कहीं तो उसकी प्रशस्त विहाय गति कहीं लिखती है उन्होंने, पेज नंबर वही, मुझे वहां लगा था कुछ गड़बड़ी थी। पेज नंबर 40 निकालो, वो नीचे के दूसरा पैराग्राफ है ना, ऊपर मुझे पढ़ना है। वो पढ़ा तभी मुझे वो खटका था। देखो वो विकलेंद्रिय जीवों के वाला पैराग्राफ है ना बीच वाला, उसमें नीचे से तीसरी लाइन क्योंकि उसके आगे पढ़ेंगे। अभी उद्योत के उदय सहित जीव की बात चल रही, उसके परघात उद्योत और प्रशस्त विहार गति लिखा था, वो अप्रशस्त चाहिए था। तब से वो मेरे प्रश्न घूम रहा था कब से। ऊपर देखो ना, प्राकृत में देख लो, वज्जो उदय यानी उद्योताचा उदय संयुक्त विगलेंद्रियस वी पंचे उदय ठाननी, उसके भी पांच उदय स्थान होते हैं। परघात उज्जो व अपसत्थ विहाय गति, अपसत्थ स्पष्ट लिखा है ना, और नीचे उसका प्रशस्त कर दे वो अ करना। तभी मैं बोलने वाली थी कि वो ही रह गया ऐसा, क्योंकि द्विंद्रियादि को अप्रशस्त विहार गति ही होती है, जैसे दुस्वर ही होता है वैसे अप्रशस्त विहार गति, उनमें कोई प्रशस्त विहार गति नहीं होती। नहीं, उदय सहित वालों की बात कल पढ़ेंगे, अभी तो हम यही रुकेंगे क्योंकि आज बहुत सैचुरेट हो गया ना। अभी 42 पेज पर हमने अप्रशस्त विहार गति पढ़ा ना, परघात उद्योत अप्रशस्त विहार गति, वो सब कल फिर दोबारा पढ़ेंगे ये पैराग्राफ, वहां से ही पढ़ेंगे उद्योत सहित वालों की बात। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं भाई।